अमेरिका वाले जालिम थे, तो देख लो कि हमने इनसे भी इंतकाम लिया। इन दोनों कौमों के उजड़े भी इलाके खुले रास्ते पर वाके हैं। हिजर के लोग भी रसूलों की तकजीब करते रहे, हमने अपनी आयात इनके पास भेजी, अपनी निशानियां इनको दिखाई, मगर वो सबको नजरअंदाज ही करते रहे। इसको हाईलाइट कीजिए। जो कौमें अल्लाह की उतारी हुई आयात को इग्नोर करें, निशानियों को ना देखें, कुरान की आयतों को ना देखें, फिर उनका हाल यही होगा। वकान यनहितून मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने इनको सुबह होते ही आ लिया और उनकी कमाई इनके कुछ काम ना आई। कौम हिजर जो ये बड़े बड़े घर बनाती थी, इस कौम की उम्र 100 100, 200 200, 300 300 साल थी। तो जब मट्टी चूने के घर बनाते थे तो वो इनकी जिंदगी में गिरने लग जाते थे। जब वो घर गिर जाते तो कहते, ओ हो, हमारी जिंदगी में गिर गए। अल्लाह ताला ने इस कौम को इतनी ताकत दी कि इनके नाखून सख्त थे पीतल की तरह, और उनसे ऐसे करके जैसे वो कार्विंग की जाती है, तो अपने घर जो है पहाड़ों में बनाते थे, जिसमें भी ये 200 300 साल तक रहते थे। तो अल्लाह ने कहा कि जब उनकी पकड़ का वक्त आया तो ये घर पड़े रहे। आज भी इसकी तस्वीरें मौजूद हैं। एक प्रेजेंटेशन अगर हुआ तो आपको आज इंशाल्लाह भेज देंगे कि जिसमें कौम हिजर के घर देखिए। आज वो बस्तियां पड़ी हुई हैं लेकिन लोग नहीं हैं, इसलिए कि जब लोग अपने घरों में अल्लाह से बेखौफ होकर जीते हैं तो अल्लाह ताला उनको वहां से खत्म कर देता है। फिर अल्लाह ताला और आपको और मुझे सबको इस दुनिया में भेजने का मकसद सिखाते हैं। वमा खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, हमने जमीन और आसमान और इनकी सब मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया, और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। ये है पर्पज ऑफ लाइफ। हम इस दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं किए गए। क्या बस इंतजार करो? बस है नबी, आप इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना तरीके से दरगुजर से काम लें। यकीनन आपका रब सबका खालिक है, वो सब कुछ जानता है। क्या पता चला, ये बहुत ही प्यारा लफ्ज है, फसफहिस्सफल जमील, ऐसा खूबसूरत दरगुजर कीजिए जैसे कि करने का हक है। देखिए, जो लोग जिंदगी को बेमकसद समझते हैं वो आपकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे, तो उनके मुंह ना लगे। यहाँ अल्लाह ने मैसेज दे दिया, तरीके से बात करें, जो आज है उनके साथ नरमी करें, इनकी बेअमली को इग्नोर कर दें, इनको सहारा दें। देखिए, जब कोई शख्स भी नया नया दीन पे आता है ना, वो टूटा हुआ आता है, वो बहुत सारी मुखालफत सह के आता है। अब अगर आगे से दाई दीन उनको सख्तियां करे, उन पर डांट करे और उनको छोटी छोटी बातों पर घूरे, तो फिर उनके दिल और टूटेंगे। बहुत मुश्किल होता है अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरी तरफ आना। तो आज जो लाइफ स्टाइल चल रहा है उसमें तो इतनी मसरूफियात है, इतनी अट्रैक्शन है। हम तो रमजान में ईद की तैयारियां करते रहते थे, इस साल तो हमें आखिरत की तैयारियां करने को पड़ गई। तो सिखा दिया कि आप इनके साथ नरम बात करें, अच्छे तरीके से करें। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और वो सब कुछ जानता है, और बाकी रह गई दुनिया की चीजें तो उस पर क्या नजर डालनी। हमने तो आपको 7 ऐसी आयात दे दी जो बार बार दोहराई जाने के लायक है। ये कौन सी है? सूरह फातिहा। तो ये सूरह फातिहा का एक नाम आगे, इसको हाईलाइट कर लीजिए, सब अम मिनल मसानी। सब अरबी में 7 को कहते हैं, मसानी कहते हैं दोहराई जाने लिए, रिपीटेड वर्सेस, क्योंकि में हर नमाज में लाजिम है, इसके बगैर नमाज होती नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बार बार आपको पढ़ने वाली इतनी प्यारी आयतें दी। बल कुरान अल अजीम, इस आयत से मुफसरीन कहते हैं कि सूरत फातिहा कुरान से अलग है। ये तो इसकी अहमियत की खातिर इसको शुरू में डाल दिया जाता है, वरना आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी को क्या मिला? कुरान मिला और साथ ही साथ सूरह फातिहा मिली। सूरह फातिहा ऐसी जैसे एक छोटा सा सहीफा, एक बुकलेट मिल जाता है। तो अल्लाह के नबी को कहा, जब आपको कुरान दे दिया, मुझे और आपको भी ये कहा जा रहा है, आप दुनिया की चीजों की तरफ क्यों नजरें उठाएं? आपको तो अल्लाह ने इतना प्यारा कुरान दे दिया है। ला तमुद्दन नई नई कैला मत नबी मिन होम, तुम इस मताए दुनिया की तरफ आंख भी उठा कर ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, ना इनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाओ। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको, ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ आगाह करने वाला हूं। ये इसी तरह की तंबी है जैसी हमने इन तफरका परदाजों यानी फिरके डालने वालों की तरफ भेजी थी, जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर लिया। यहाँ कुरान से मुराद तौरात है, तो रात के लिए भी कुरान का लफ्ज आया है। पर मैं तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर इन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। इसमें चंद बातें बहुत ही खूबसूरत है जिसकी जरूरत है बात करने की। पहली बात आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना तआला ने यहाँ ये बात कह दी कि जो लोग आपकी तरफ आ जाते हैं दीन सीखने, आप उनके साथ अच्छी बात करें, और जो शौक नहीं रखते, जिनकी दुनिया की तरफ तवज्जो है, आप उनकी तरफ मत देखें। लोगों के बड़े बड़े घर देख के आपकी आंखें ना लंबी हो जाए। मद्दा क्या कहते हैं, खींचना, अरबी जुबान में लफ्ज़ भी है ना हरूफ मद्दा, जिनको लंबा खींचते हैं। तो अब लंबा के किसी का घर देखा तो यूं देखते गए, कोई गाड़ी गुजरी तो हाय लंबी है, हाईलैंड क्रूजर, भी सांस तो ले लें आप, क्या फर्क पड़ेगा, आखिर तो मैयत गाड़ी में ही जाना है, कोई हमें हमारी मनपसंद गाड़ी में नहीं छोड़ेगा। दुनिया की तरफ वो देखे जिनके पास कुरान नहीं है। ये आयते हैं जो दिल करता है कि फिर सब कुछ ले लो लेकिन मेरा कुरान न लेना। हकीकत है हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन, सूरह यूनुस में पढ़ चुके हैं ना, आयत 57-58 में ये ऊपर लिखा हुआ है। क्या लोगों, तुम्हें हमने वो किताब दे दी जिसमें इतनी खूबी है, हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन, तो आप अब खुश हो। अगर आपकी जिंदगी में कोई कॉम्प्लेक्स था आज तक, हाय मेरी बहन का घर बड़ा मेरा छोटा, डोंट वरी, अल्लाह आपका दुनिया में भी बड़ा बना देगा और ना हुआ तो आखिरत में तो मिल ही जाएगा आपको। तो जिसको दीन की दौलत मिल जाए उसको दुनिया की दौलत नहीं करनी। दूसरों की चीजें देखें, खुश हों, उनको दुआ दें, उनके लिए उसमें बरकत की बात करें, उनसे कहें कि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, दैट्स इट। ना रीझें ना पूछें कितने की ली, कहाँ से ली, हाय कितनी खुशकिस्मत है। और एक छोटी सी नसीहत आपको कर दूं, उम्मते वसत को आज इस नसीहत की जरूरत है, कहीं आपको शक भी पड़ जाए ना कि किसी ने अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई चीज ली है, पूछे नहीं कैसे ली है क्या किया है, लोग खुद ही बता देते हैं, हालात ही वाजे होते हैं, कभी उसको मुबारक ना दें, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी की चीज में कभी बरकत नहीं होती, कभी खुशी नहीं होगी। जब हम ऐसी चीजों पे बढ़ चढ़ के पूछते हैं कैसा है, या जब फिर खबरें फैलती हैं ऐसा घर ऐसे कपड़े ऐसी शादी, अब अगर कारोबार में कुछ खराबी थी या लेन देन में मसला, तो कहते देखा तारीफें कितनी हुई। दूसरी तरफ आप देखिए कि कोई अपने ऊपर इतना बोझ डाल के अल्लाह को नाराज करके कुछ लेता है, किसी ने नोटिस भी नहीं लिया, इट्स फाइन दैट्स इट, तो कहेगा कि मैंने क्या किया। आपको बहुत अच्छा सूट पहन कर आए, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, अगर आप लोगों के लिए पहन के निकले हैं तो आपका दिल टूटेगा, सच्ची जो बात है, किसी को पसंद नहीं आया, फिर खुद ही बताएं कैसा लग रहा है, कुछ कहा नहीं आपने, क्या हुआ। और अगर आप अपने लिए पहनते हैं, आपका अपना दिल बता रहा है आपको अच्छा के बुरा, आप तो चाहते ही नहीं कि कोई आपको अच्छा या बुरा कहे, ठीक है। तो दुनिया की चीजों पे बहुत नजरें ना रखें। वक्फ़ जनाह का, अपने कंधों को झुका दो। और अगर आप देखें तो अगली सूरतों में अब यही चीज माँ बाप के सामने बैठने के लिए आ रही है कि अपने माँ बाप के आगे कंधे झुकाओ, तो कहा कि लेट डाउन ना करें उन लोगों को जो आपके पास आए। बस दफा लोग दीन की तरफ आने वालों को झिड़कते बहुत है, क्योंकि वो एक खास दुनिया छोड़ के आए होते हैं, अब लोग उनके ऊपर पीछे हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो ऐसे हैं वो हैं, कहा नहीं जो संजीदा नहीं है आप उनको मत देखें, जो संजीदा है उनको देखें, अभी ये नए नए लोग हैं, अभी कितनी मुश्किलों से निकले हैं। जब इंसान कोई भी काम नया नया शुरू करता है मुश्किल लगता है, तो अभी तो इन्होंने किया कि अभी पढ़ा कितना, अभी जो जुमा जुमा 8 दिन तो इनको आते हुए हुए, अभी तो आगे बहुत लंबा सफर बाकी हुआ है, तो लिहाजा आप इनको देखें। अबू जहल जैसे दौलतमंदों के हाल पर कुड़ना छोड़ दें, वरना आपका दिल टूट जाएगा, तो आप दूसरों की हिफाजत कैसे करें। तो जो आए हुए उनकी तरबियत करें, उनका तज़किया करें, उनको अच्छे तरीके से लें, तो बात फायदे की होगी। और हकीकत है कि जब आपका सफर दीन की तरफ शुरू हो तो हर कदम फूक फूक के उठाएं और अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह मेरे कदमों को हिदायत पर आने के बाद पीछे न पलटाना। देखिए आप इमेजिन करिए कि एक स्लोप है, इस तरह फील करें आप, स्लोप पे चढ़ने वाला चढ़ता रहेगा तो चढ़ जाएगा ऊपर, अगर किसी मुकाम पे खड़ा होना चाहे तो दो में से एक ही बात होगी कि या तो नीचे गिर जाएगा या लुढ़क जाएगा, गिरेगा खड़ा नहीं रह सकता। स्लोप पे इंसान को फिर भाग के चढ़ना पड़ता है। आपका मेरा जिंदगी का सफर अब शुरू हो गया, अब तो एक ही रास्ता है, भागते रहे भागते रहे। इस रमजान को आप इस तरह इमेजिनेशन में लाएं, मैं और आप भाग रहे हैं, अल्लाह ने हमें कुरान दिया, रोज इतना सुन रहे हैं, अभी तो हमें इसकी कदर नहीं है, ये तो एक वो एनर्जी टॉनिक की तरह सुन रहे हैं ना। ईद के दिन आप सब अपनी फीलिंग्स लिखिएगा, लिख लें इसी पे अपना होमवर्क। अगर ईद के दिन कुरान नहीं, और ईद के दिन मैं बुलाऊंगी भी तो आप कोई नहीं आएंगे, पूछेगा भी कोई नहीं आप कौन और हम कौन, काम खत्म हुआ है, लोग पहले ही पूछना शुरू हो जाते हैं आप कब जा रही हैं, खैर से आपके तो नहीं जहन में सवाल। लेकिन ऐसी क्रेविंग होती है उस दिन, रोना ही आई जाता है, रोना ही आई जाता है ईद वाले दिन। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि पूरे साल में सिर्फ ईद का एक दिन हो सकता है जिस दिन बाज़ाब्ता तौर पर क्लास नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ा दे एडमिन्स को, मैंने देखा ईद वाले दिन भी ये रूम खोलते हैं, पिछले सालों में से किसी एक दिन की बात ज्यादा है। वैसे भी जब परदेश में हो तो कह कहते ना कि ईद तो अपनों के साथ ही होती है, तो दीन वाले अपने ही होते हैं लेकिन वो सारे उस दिन अपनों में मसरूफ हो जाते हैं। तो मैं ऐसी घर में थी तो मैंने कंप्यूटर खोल लिया, तो पैल्टो खोला ना तो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा रूम खुला हुआ था। इतनी मुझे मोहब्बत आई, मैंने देखा ये है कौन सी एडमिन, तो वो थी मुझे खुशी। फिर मैंने उनको थोड़ी देर में कहा कि मैं माइक ले सकती हूँ, तो मैंने अपने ऑनलाइन लिसनर्स के साथ बातें शुरू की, मतलब मैसेज के पूरा घंटा सवा का लेक्चर हो गया। इतना मैंने इंजॉय किया, मैंने कहा असल में मैं रह नहीं सकती कि मैं कैसे करूं, और उन्होंने भी इंजॉय कर, वो जो बेचारे उस वक्त कंप्यूटर थे वो मेरी तरह फारिग ही थे, क्योंकि वो भी ऐसे ही थे कि रोज सुनते थे, इतना सुनते थे, अब हम कैसे सुने क्या करें। तो यकीन करें ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, इसको ग्रैब कर ले, अभी आपको अंदाजा नहीं है इसका। जब ये छूटती है ना फिर बंदा टूटता है। जिन दिनों में आपने कभी कोई विटामिन खाना शुरू किया होगा तो आप हर दिन एनर्जी फील करते होंगे, जब वो छोड़ते हैं तो डॉक्टर कहते हैं एकदम ना छोड़ें, तो मैं आप तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ये कभी ना छूटे। आज एक एक कदम हमारा हिदायत की तरफ चल रहा है, अभी बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद ओनली वन स्टेप, तो इसको दौरे कुरान को अपना स्टेप वन समझे, कंप्लीशन नहीं है ये, तो अभी बिगनिंग ऑफ द एंड हुआ, अभी तो आपने शुरू की है चीज। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग इस रास्ते में आए आप उनको वार्म वेलकम के, चिड़े नहीं, बुराई ना करें। फिर इसी तरह देखिए कि जो कुरान को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, तो वही बात है कि आसान अहकाम को ले लिया, मुश्किल को छोड़ दिया। और जो कौम अपनी किताब के साथ ऐसे मामले करती है अल्लाह ताला उसको तोड़ के रखते हैं। किताब के हामिल जब कुरान के साथ ऐसा मामला करेंगे तो इसी तरह से अल्लाह ताला उनके साथ भी ये मामला करेगा। और यहाँ लफ्ज कुरान को भी आप देखें कि अल्लाह ने इसको कितने प्यार से यहाँ पेश किया, इसलिए फरमा दिया फस्त बिमा तुमर, बस आप हांके पुकारे कह दो, बस नबी जिस चीज का आपको हुक्म दिया जा रहा है इसे हांके पुकारे कह दो, और शिर्क करने वालों की जरा परवाह ना करो, इसको हाईलाइट करें, परवाह ना करें लोगों की, जो भी लोग कर रहे हैं आप अपने हक पे जमे रहे। ये थी वो आयतें जिसके बाद पे खुलेआम तबलीग भी शुरू हुई और आपने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। फरमाई इन्ना कफई ना कल मुख्तसीन, तुम्हारी तरफ से हम इन मजाक उड़ाने वालों के की खबर लेने के लिए काफी है, आपकी तरफ से हम इन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी है। कौन अल्लज़ीना यजलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो लोग अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार देते हैं, अन करीब इनको मालूम हो जाएगा। वलकद नालमु अन्नक यदीक सद्रुक बिमा यकूलून, हाईलाइट कीजिए और अल्लाह के नबी की मोहब्बत महसूस कीजिए। हमें मालूम है जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं इनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है, इसका इलाज ये कि अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह करो, इसकी जनाब में सजदा बजा लाओ, और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। और वो कौन सी घड़ी है? वो कुरान, वो मौत की घड़ी है। यानी अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कि आप मरते दम तक सजदों मेरे, नमाजों मेरे। तो बाज़ लोग कहते हैं हमारे बुजुर्गों को तो अब माफ हो गई है क्योंकि वो पहुंच चुके हैं, सुलूक की जो मंजिलें तय करनी थी उन्होंने कर ली। नहीं, तो खुलासा क्या दिया पूरी सूरत के एंड पे कि जब पूरी उम्मत एक कुरान पे अमल करती है तो वो जुड़ी रहती है, और जब किताब के कुछ हिस्से बखरे होते हैं तो किसी ने एक टुकड़ा पढ़ा किसी ने दूसरा, तो उम्मत टूटती है। और जो मुकाम कोई कौम अपनी किताब को देती है वही मुकाम उनका दुनिया में बन जाता है। ऐसी टूटी फूटी कौम को जोड़ने के लिए अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि आप जिंदगी के आखिरी लम्हों तक इस पैगाम को आम करते रहे। क्या वो पैगाम आज मेरे जरिए आम हो गया? क्या मैंने अल्लाह के नबियों वाला वो काम अपने जिम्मे लिया और इस जिम्मेदारी को महसूस किया? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए इसको आसान करे। मौत पे सूरत हिजर का खत्म है तो क्यामत के आने पे सूरत नहल का शुरू है। दोनों का रब देखिएगा, हत्तयाति अकल यकीन, फिर आपको मौत आएगी। तो मौत के बाद क्या है? अतामरुल्लाहि फला तस्ताजिलू, आ गया अल्लाह का हुक्म, अब इसके लिए जल्दी ना करो। सूरत नहल एक बड़े यूनिक अंदाज से शुरू होती है। थोड़ी सी बातें सूरत नहल पे देखिए। सूरत नहल का एक नया नाम सूरत नेम भी है, नेमतों वाली सूरत। और मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ कि सूरत नहल पढ़ते वक्त आपको क्या फील होगा कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शीशे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मंजर चेंज हो रहे हैं, कहीं बहुत खूबसूरत घास है और उस पर बकरियां चर रही हैं, थोड़ी दूर जाते हैं तो गाय दिखती हैं, कहीं घोड़े दिखते हैं, कहीं फिर बादल दिखते हैं। कभी आपने नॉर्दर्न इलाकों पे सफर किया हो तो आपको बहुत खूबसूरत सीन दिखेंगे। इतनी प्यारी इसमें झलकियां कायनात की कि सिर्फ पढ़ते हुए ही ऐसे लगता है कि हम सैर करके आ गए। बिल्कुल कभी आप आजमा लें, अब ये कोई वजीफा या टोटका नहीं है, अगर मानी पे गौर करें, अगर आपको समझ आए ना, कभी आपका दिल ना लग रहा, आप घर में आप बोर हैं, आप कहते हैं हाय कहीं चलूँ ना, बाहर चलें सैर करें, आप ना मियाँ साहब मान रहे हैं और अब्बू हैं तो अब्बू भी नहीं मानते, सूरह नाहल खोल के पढ़नी शुरू कर दें, बिल्कुल आपको ऐसे इमेजिन होगा कि आप गाड़ी में बैठे इन सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन ये सूरत हकीकत में अपने अंदर बहुत कुछ रखती है। टीम वर्क की बेहतरीन मिसालें, नखल कहते हैं मक्खी को, शहद की मक्खी, जिसको हम नाक पे भी ना बैठने दें, कभी हाथ पे भी ना बैठने दें, आप इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे कि कुदरत का कितना बड़ा वो शाहकार है। तो मक्की दौर का आखिर है, अल्लाह ताला उसमें तफक्कुर की दावत देते हैं, गौर करो देखो। इस पूरी सूरत में तौहीद का इस बात भी है और शिर्क की नफी भी है और नशुक्री के रवैयों की बात देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू, आके अल्लाह का फैसला, अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ, पाक है वो और बालों बरतर इस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। फैसला क्या है? कुछ कहते हैं हिजरत का फैसला, क्योंकि मक्का में हालात अब तंग से तंग हो रहे थे। कुछ कहते हैं बदर का फैसला है, क्योंकि उसमें मक्का वालों को खूब मजा चखाया गया। और कुछ कहते हैं कियामत का फैसला है, और ये सब कुछ ठीक है। और हकीकत यह है कि जो चीज चल पड़ी वो आने ही वाली है, इसलिए जरूरत है कि तुम इंतजार करो, जब कियामत आएगी तो तुम्हारे साथ होगा क्या। फरमाया वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाजिल फरमा देता है। ये कौन सी रूह की बात है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। देखिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर एक ये वही लेकर आते थे, और वही के रूह, जैसे जिस्म में रूह पड़ती है तो जिंदगी होती है ना, इसी तरह जिस्म में जब वही की बारिश होती है तो इंसान रूह होता है। आप कह लीजिए कि जिस्म की जिंदगी रूह से है और रूह की जिंदगी वही से है, तो रूहुल अमीन ही लाते हैं। और बच्चे में जो रूह डलती है ना, वो भी जिब्राइल के जरिए से डलती है। फरमाया फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं आएगा, और इस हिदायत के साथ के लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बस मुझसे डरो। इसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया और वो बहुत बालो बरतर है इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। है झगड़ालू, पैदा होते ही बच्चा झगड़ने लगता है। सबसे पहले तो माँ से लड़ता है, दूध पीते हुए लड़ता है, सोना है तो रोना है, कुछ भी मसला तो रोना है। बच्चा तो रो रो के अपनी बात बताता है, और कहते हैं कि बच्चे के रोने को माँ ही जानती है। इस तरह एक इंसान के रोने को अल्लाह ही जानता है। फिर थोड़ा सा बच्चे बड़े हुए तो दूसरे बच्चों से लड़ना शुरू कर दिया। कुछ ने सोना होता है तो खुद से लड़ रहा था, माँ कहती बस अब इसको नींद आई तो बस सो जाओ चुप करके, मसला क्या, रो रो के सोना है, भूख लगी है माँ दूध दे रही है नहीं पीना, रोना है, पहले रोएंगे फिर लड़ेंगे, तो फितरत में झगड़ा डल दिया। फिर जरा से बड़े होते तो वो चचा तायों के बच्चों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और थोड़े बड़े हुए तो स्कूल कॉलेज के झगड़े शुरू हो गए, और बड़े हुए तो माँ बाप से झगड़ना शुरू करती है, भाई बहनों से झगड़े। और आप देखिए, आप सब अपना याद करें, शादी से पहले कितनी लड़ाइयाँ होती थी। कोई है भाई बहन जो ना लड़े? वो सगा नहीं होगा, सगे भाई बहन खूब लड़ते थे, और बाद में फिर इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार कि बस बात करते ही दिल करता है कि रोने लग जाओ। और उन्हीं को कहते हैं, कई मुझे अच्छी तरह याद आता है कि बड़ी बहनें चूंकि जरा वो होती थी ना सख्त सी के बहनों भाइयों पे नजर रखती थी, तो छोटे कब मम्मी इनकी शादी होगी, इनकी शादी करें, ये हमारे सर पे अरबों के सवार रहती हैं। जब शादी हुई तो रोई। फिर इसी तरह एक दो बहनें थी, तो वो बड़ी इसलिए बड़ी चुपती थी कि बड़ी बाजी को सारी चीजें मिल जाती हैं, पहले उनके छोटे कपड़े मुझे मिलते हैं, उनकी बची चीजें, तो बाजी से हार वक्त लड़ाई। तो जब दिन गिन रहे हैं कि बाजी की शादी, और जब बाजी की शादी हुई तो बाजी से ज्यादा वो छोटी रो रही है, झगड़े ही झगड़े। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक झगड़ा बहुत बुरा है जो भाई बहनों में होता है, और वो माँ बाप की जायदाद का झगड़ा है। वो झगड़ा तो कभी किसी का ना हो। शैतान इतना जालिम है कि दुनिया से जाने वालों की चीजों पे लोगों को लड़ाता है। आपके माँ बाप खुद अपने हाथों से छोड़ गए, और वल्लाह ही जिस दिन से माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद आपको विरसा मिला, अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। लेकिन अगर जिन्होंने ये चीज फील की है, दिल से पैसे की हसरत ही खत्म हो जाती है। खड़े खड़े वालिद की डेथ हुई थी हमारे, सोचा भी नहीं था कभी, और जब उनकी चीजें मिली उस दिन से तो दुनिया मट्टी का मैल रह गया, कि ये पैसा जिसको सारी जिंदगी उन्होंने इतनी इबादत समझ के कमाया, कैसे चंद घड़ियों में हमारे हाथ में आ गया। जिंदगी में इंसान बाज दफा माँ बाप से कोई चीज मांगने के लिए कितनी कोशिश करता है, मरने के बाद ये सारा आपके, जब आपको तो इतना आपके पास आ गया तो फिर उस पैसे को क्या रोना। ये देखें कि जब आपके पास कहीं से आया तो ये आपके पास भी नहीं रहना। तो बहुत नासमझ लोग हैं कि जो जायदादों पे झगड़ते हैं। तो अपने लिए इसमें नियत कीजिए, मैंने झगड़ा नहीं करना, कहीं ना झगड़े, लड़ने वाले लोग याद रखे लड़ते ही रहते हैं। आप अपने आप से खुद पूछें, अगर अपने बारे में खुद नहीं जानती ना, तो अपने साथ रहने वालों से पूछें, क्या मैं झगड़ालू हूँ, क्या मैं झगड़ती हूँ, क्या मैं झगड़ा कराती हूँ। पहले बंदा खुद झगड़ता है फिर झगड़े कराता है। आज बैठिए जरा हस्बैंड के साथ, थोड़ा सा निगोसिएशन करें, घर में झगड़ा क्यों होता है, मेरी ज्यादती होती है कि आपकी होती है। अच्छा जब मैं झगड़ने लगा मुझे बता दिया करें। अच्छा जब आपकी ज्यादती हो तो फिर मैं बताऊं, घर में कुछ ना कुछ कर लीजिए, आप देखिएगा घर में बरकत आ जाएगी। जिस घर में लड़ाई होती है वहां से सुकून चला जाता है। इसी तरह बच्चों को भी बैठ के समझाएं, और सबसे बदतरीन झगड़ा और जवान औलाद का माँ बाप के आगे बोलना है, जिसका जिक्र इंशाल्लाह हम अगली सूरतों में पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला हमें झगड़ों से बचाए। उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी है और तरह तरह के दूसरे फायदे भी हैं, इनमें तुम्हारे लिए जमाल भी है, जबकि सुबह तुम इन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम को तुम इनको वापस लाते हो। वो तुम्हारे लिए बोझ ढो ढो कर ऐसे मुकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जानफिशानी से के बगैर पहुंच ही नहीं सकते थे। सुभान अल्लाह, देखिए ये अल्लाह ने छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, एक दूध की फैक्ट्री, गोश्त की फैक्ट्री, और कैसे घास में जाती हैं। कभी आपने यूरोप में इन बिटवीन यूरोप सफर किया हो ट्रेन में, तो रास्ते में आपको ग्रीन पहाड़ और उन पे छोटी छोटी सफेद बकरियां, जो बकरियां भी नहीं बल्कि शीप, सफेद बालों वाली दिखती हैं, इतना खूबसूरत मंजर होता है। और मुझे काफी दफा मौका मिला कि हम बाय ट्रेन गए एक जगह से दूसरी जगह, तो मुझे ये सूरत नाहल याद आती है। तो मैं सोचती हूँ देखिए जमाल भी कितना है। देखिए दुनिया में जो चीजें हम आप बनाते हैं ना, वो क्या है कि जिसमें जमाल हो तो कमाल नहीं। बस हमारे घर में कुछ चीजें डेकोरेशन पीसेस के तौर पे, उसका मकसद कोई नहीं, बस पड़ा हुआ खूबसूरत लग रहा है। आप अब जाके घर में ढूंढिए कितनी चीजें सिर्फ डेकोरेशन के लिए, ठीक है, आप कितनी चीजें जो काम के लिए, मतलब वैक्यूम क्लीनर काम के लिए, ब्लेंडर काम के लिए, झाड़ू पोछा काम के लिए। काम वाली चीजें हम कहाँ रखते हैं, छुपा के, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती, तो डेकोरेशन सजाते हैं। अल्लाह ने जमाल और कमाल को एक साथ कर दिया, अल्लाह की चीजें डेकोरेशन पीसेस भी काम किए, तो डेकोरेशन पीसेस लिया करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो ले कि जिसमें से कोई दूध तो निकले जो आप पी सके। बेकार, मैं सोचती हूँ जब भी कभी मैं आऊँ और बहुत डेकोरेशन देखूँ तो मैं सोचती हूँ इनसे मिलता क्या है। शुरू में अच्छे लगते हैं, एक दो दिन, 4 6 10 दिन के बाद फिर आप यूज्ड होते हैं, बाद में भी बल्कि ना दिल भरता है। तो खूबसूरत हो, सिमेट्री तो रखे, लेकिन इतने ना रख लें कि घर से ज्यादा वो स्टोर लगे कि शायद फॉर सेल का साइन लगा हुआ इस पे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये छोटी छोटी मशीनें बनाते हैं, तुम्हारा बोझ उठाते हैं। हकीकत ये कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। 3 सेकंड तक जरा गौर करें, इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, कितना शफीक और मेहरबान है, कितने भयानक शक्लों के जानवर पैदा कर देता, मिट्टी के तोते, पत्थर के तोते खड़े कर देता जिनको देखते हमारी चीखें निकलती, कितनी मासूम बकरियां, भेड़ें, कैसे नाजुक से जानवर अल्लाह हमारे सामने रखते हैं, ये अल्लाह का प्यार है। इसने घोड़े और खच्चर पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने, और वो बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिसका तुम्हें इल्म तक नहीं, और अल्लाह ही के सिवे है सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। इसको हाईलाइट करें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता तू दिखा दे, मुझे टेढ़े रास्तों से बचा के अगर तू सीधे रास्ते पे ले आया तो रब्बना ला तुझे कुलू बना बाद ऐसा देतना, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता, तो क्यों नहीं दी, क्योंकि तुम सब ने मांगी नहीं है। याद रखिए हिदायत का ताल्लुक इंसान की तलब के साथ है, जितना आप हिदायत मांगते जाएंगे अल्लाह ताला आपके लिए हिदायत के रास्ते आसान करता रहेगा। आगे जाके इंशाल्लाह आपको लिखाऊंगी कहीं कि हिदायत पाने के क्या जराए होते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ इसको एंजॉय करें और दुआ मांग लीजिए कि दिन सिरात मुस्तकीम रब्बना ला तुझे कुलूबना बाद इस हदीतना, तो हिदायत अल्लाह देता है, और अल्लाह कैसे देता है, खुदा के हाथ नहीं पकड़ के देगा, अपनी इस किताब के जरिए से हिदायत देता है। तो मेरे हाथ में अल्लाह ने ये किताब क्यों पकड़ाई, क्योंकि अल्लाह का इरादा है मुझे हिदायत देने का। इस खुशी को महसूस करके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कभी इससे अलग ना करता। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए चारा भी पैदा किया। वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इनमें एक बड़ी निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। क्या निशानी है इन सब में, आप देखिए कि जहां भी आता है ना, इन्ना फी ज़ालिक लआया, तो वहां खुद से पूछें कोई बड़ी बात होगी जो अल्लाह ने ये बात की। तो अगर आप गौर व फिक्र से काम लें तो आपको यकीनन बहुत सारी निशानियां दिखेंगी सारे में। मसलन आप देखिए कि पानी आसमान से उतरा, कैसा फीका, बारिश का पानी पिया करें, बरकत भी है उसमें, शिफा भी है, लेकिन चख के देखे बिल्कुल फीका होता है। फिर आप देखिए जमीन पे जाता है, मट्टी को थोड़ा सा टेस्ट किसी वक्त करें, कड़वी होती है, लेकिन उसमें से जैतून कैसे निकला? किसने लाइट ऑलिव ग्रीन कलर का खूबसूरत सा कलर जो है वो मट्टी में डाला, उसमें से जैतून निकले? खजूर की मिठास कहाँ से आई? क्या किसान साथ चीनी की बोरी डालता है, कोई ग्लूकोज डालता है, क्या डालता है? और अंगूर, अल्लाह अकबर, एक हल्का हाथ लगे आंसू निकल आते हैं उसके। उसी मट्टी में से सख्त जैतून भी निकले और उसी से नरम अंगूर निकले। इसी तरह कुछ दिलों के अंदर से किसी तरह की खैर फूटती है, किसी तरह कुछ शर्त क्या कि दिल की इस मट्टी पे वही का पानी डाल लें। ये गौरव फिक्र है। आप अल्लाह से कहे, अल्लाह आपको पता है मैं अंदर से अंगूर हूं कि जैतून हूं कि खजूर हूं, जो भी मैं हूं ना तो बाहर ले आ। और इस किताब के साथ साथ नियतें करें, इरादे करें कि अल्लाह मेरा टैलेंट बाहर लेकर आ, मेरे साथ कब्र में ना दफन हो जाए ये सब कुछ। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम सबको इस पे गौर व फिक्र की दावत दी। इसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तारे भी इसी के हुक्म से मुसख्खर है। इसमें बहुत सी निशाने इन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं, और जो बहुत रंग बिरंग की चीजें इसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा की, इनमें भी जरूर निशानी इन लोगों के लिए जो सबक हासिल करते हैं। अब इसका क्या सबक है? अब देखिए सूरज चांद और सितारे तीन चीजें आसमान की मखलूक हैं। अल्लाह ताला इस पे गौर व फिक्र करवाते हैं कि देखो अल्लाह ने जमीन की तरह आसमानों को भी तुम्हारे काम के लिए लगा दिया है, तो क्या तुम उस रब के कामों में नहीं लग सकते? मिसाल देती हूँ, समझ लीजिए, अल्लाह ने हम सबको इस दुनिया में क्यों भेजा? काम के लिए, इम्तिहान है ना, लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब जब आपके दुनियावी इम्तिहान होते हैं तो आपकी माँ अमूमन क्या चाहती हैं? बच्चियों को माएँ क्या कहती हैं? तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। वैसे तो आजकल माशाल्लाह बच्चियों को इम्तिहानों के बगैर भी माएँ यही कहती हैं कि आप बैठे मैं ही काम करती हूँ। ये भी एक अजीबोगरीब कहानी हो गई, लेकिन बहरहाल आप देखिए कि इम्तिहान के दिनों में माएँ काम नहीं कराती ना। अब इसी मिसाल को आप ले आइए, मैं और आप इस दुनिया में आए इम्तिहान के लिए, तो अल्लाह कहते तुम इम्तिहान दो, तुम्हारे काम मैं करता हूँ। ये रेस खाना पानी सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए इसलिए रखा कि हम फोकस होके अल्लाह ताला के कामों पे जमे और इसमें अल्लाह ताला से इन सारी चीजों को लेकर चले। फिर समंदरी चीजों पे आ जाइए, वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा। कभी सोचिए इतनी बल खाती हुई मौजों में बंदा जिंदा वापिस आ जाए, ये किसकी वजह से है? अल्लाह का हुक्म है। जब एक अल्लाह समंदरों की मौजों के सीने फाड़कर हमें उसमें जहाज और कश्तियां चलाने की इजाजत दे देता है, इससे बड़ी किसी और चीज की क्या दलील होगी कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है? क्यों समंदर को मुसख्खर किया? ताकि तुम इससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, क्या कहते हैं उसको, सी फूड खाओ, और इससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। वो क्या होते हैं? पल। ये सबको पता है। आपको तो पल कैसे बनता है? मैंने इसकी डिटेल सुनाई थी किसी भी एक क्लास में, इसी पे सुनाई होगी। वो अल्लामा इकबाल का बस शेर ही, अभी तो सुना के आगे चली जाती हूँ जो मुझे सही भी नहीं आता, कि तुम्हें क्या पता क्या बीती है कतरे पे गौहर होने तक, कितनी मौतें होती हैं फिर एक कतरा मोती बनता है। कभी जाके, मुझे याद नहीं इस साल सुनाया या पीछे, लेकिन इसकी पूरी डिटेल सुनाई थी। इतनी मुश्किल से एक पल जो आपके मेरे किसी एक सेट में लग जाएगा ना, अल्लाह ने उसको कितने कुर्बानियों के बाद पैदा किया। कैसे वो मुंह खोलता है, पानी का कतरा अंदर जाता है, फिर उस पे कितने एक्शन होते हैं, फिर वो कितने थपेड़े खाता है बाहर से समंदरों के, और मारे खा खा के वो कुंदन बन के मोती बनता है। तभी तो फिर रियल पर्ल्स की कदर है ना। तो याद रखिए, अगर आपने और मैंने भी मोती बनना है, और वो रूह का मोती जिसको अल्लाह ने अपने लिए चुनना है, तो खुद को पेश करना पड़ेगा। थपेड़ों में डालिए अल्लाह के, ताकि अल्लाह ताला हमें खैर का बना दे। डायमंड अपनी शक्ल में क्या है, जब निकलता है बेरंग होता है, फीका। जौहरी उसको फिर तराशता है, उसकी सारी खूबसूरती उसके कट्स में, जितने कट ज्यादा उतने कैरेट ज्यादा है। डायमंड की खूबी क्या है, एक बिल्कुल ब्लैंक शीशा होता है, सिर्फ एक रोशनी की शुआ जब उसमें जाती है ना, बस एक तरफ से घुसती है, वो कतरा उधर से ऐसे टिक 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 करके वो उसमें आते हैं। ये है डायमंड। आप डायमंड को अंधेरे में देखें, जीरो है, कुछ नहीं है, सिर्फ रोशनी में चमकता है, क्योंकि वो रोशनी अंदर जाती है, और जितने उसके कट ज्यादा होंगे ना, उतने उसकी चमक ज्यादा होगी। और वो जौहरी को पता है कितने कट लगाने हैं। आपके मेरे अंदर कितनी खैर है, हम डायमंड बने या कार्बन बने, कोयला बने, ये अल्लाह को पता है। तो आप और मैं जितनी मुश्किलें सहेंगे ना इस दीन की खातिर, उतने कट से अदा लगेंगे। अल्लाह सुबहाना तआला कहते हैं, तुम्हारे लिए सीनत की वो चीजें निकाली जिनको तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब उस लिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और इसके शुक्र गुजार बनो। अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया ये सब कुछ लेने देने, लो दो सब कुछ करो, लेकिन मुझे ना भूलो। शुक्र गुजार बन के इन दुनिया की नेमतों को लो, पर्ल पहन लो, सी फूड खा लो, तुम समंदरों की सैरें करो, तुम क्रूज में जाओ, तुम सब मरीन में जाओ, लेकिन लअल्लकुम तशकुरून। लेकिन जब हम समंदरों में जाकर जिना देखें और जहां गैम्बलिंग के अड्डे हों और वहां जाके नाचें कूदें उछलें, तो फिर खुद ही अल्लाह को मौका देते हैं कि वो इन कश्तियों और जहाजों को डुबो के रख दे। इसने जमीन में पहाड़ों की मेहें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ठुलक न जाए। इसने दरिया जारी कर दी और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। हाईलाइट कीजिएगा, हमारी आपकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पहाड़ों में रास्ते बना दिए, नहरों में, दरियाओं में रास्ते बना दिए। तो क्या उस रब ने जब हमारी हिदायत के लिए किताब भेजी तो क्या हम उससे फायदा नहीं उठाएंगे? इसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। जिस तरह जमीन में रास्ते बने हैं ना, इसी तरह दीन के रास्तों के लिए अल्लाह ने दीन वाले लोगों को हमारे सामने रख दिया। आप देखिए कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जाहरी तौर पे भी हमारी हिदायत का इंतजाम किया है और बातनी तौर पे भी। आसमान के सितारे रास्ता दिखाते हैं, जमीन के सितारे रास्ते घुमा देते हैं। वो कौन से सितारे हैं? जिनको लोग स्टार्स कहते हैं। उन स्टार्स के पीछे लग के लोग अपना कैरियर खराब कर देते हैं। असल में इसमें मैसेज है कि जिस रब के बनाए हुए कवानीन अभी तक आउटडेटेड नहीं हुए, इस रब के भेजे हुए कवानीन शरिया ये आउटडेटेड कैसे होंगे? देखिए कितने साल हो गए सूरज को चमकते हुए, पुराना हुआ नहीं हुआ ना? क्या उसकी कोई फिजिक चेंज हो गई? क्या बहुत ही गर्मी लगने लगी, अब हीट नहीं दे रहा? गर्मी सर्दी में अपनी मर्जी से आता नहीं? जैसे सेट सिस्टम चल रहा है, एवर न्यू सूरत में सूरज चल रहा है। चांद देखिए, सितारे देखिए, तो आप कह सकते हैं जब से दुनिया बनी ये फिजिकल लॉज अल्लाह के वैसे ही काम कर रहे हैं। तो जब से अल्लाह ने कुरान भेजा आज तक वो, फिर आप और मैं ये नहीं कह सकते कि आज के दौर में कुरान पे अमल नहीं हो सकता। जिस तरह उसके फिजिकल लॉज है, इसी तरह उसके शरीयत के लॉज है। तो कभी मत कहिए कि आज के दौर में कुरान आउटडेटेड हो गया, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता। फिर क्या वो जो पैदा करता है और जो कुछ भी नहीं पैदा करता दोनों यकसा हो सकते हैं? आप जवाब दीजिए, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। क्या तुम होश में नहीं आते? यानी फिर दूसरों को जाके पूछते हो, दूसरों से डरते हो, दूसरों के रूप में आते हो? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। कहां पीछे आयत गुजरी? सूरत इब्राहिम में, वहां भी ये बात, एक नेमत नहीं गिन सकते, बाकी की क्या बात है। हकीकत है कि वो बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ और छुपे से भी वाकिफ है। हम कहते हैं क्या नेमतें गिने। कल हमने शाम को एक लेक्चर किया जिसमें हिसाब की बात थी, अल्लामा हासिब निसाब यसीरा, तो उसमें ये बात कोट की थी कि क्यामत के दिन इंसान की सारी नेकियां सिर्फ एक आंख की नजर हो जाएंगी। एक नेमत आएगी दुनिया में जो हमें अल्लाह ने दी थी और हमारी सारी जिंदगी की नेकियां खा जाएगी, और फिर भी अभी उसका हक बाकी होगा। तो कैसे मैं और आप अल्लाह की नेमतों का हक अदा करते हैं? सोचिए, इस वक्त यहाँ कुरान सुनने के लिए आना और सुनाने के लिए आना, ये कम नेमत है। फजर पड़ी, ये कम नेमत है। सहरी में उठे, ये कितनी बड़ी नेमत। बिस्तर पे लेटे नेमत, उठे नेमत, उठ के बैठे नेमत, चलना चाहा नेमत, बैठे ब्रश पकड़ा, दांतों को लगाया, हर चीज अपने काम पे काम करती रही। एक दिन में करोड़ों हमारे पास अल्लाह की नेमतें, क्या गिनोगे क्या नहीं गिनो? तो क्या तुम नेकियां गिन गिन के करोगे? सोच सोच के नेकियां करोगे? नहीं। इतनी नेमतें दे के फिर दरगुजर करता है, रहम करता है, वरना तो इंसान कहाँ का खो चुका होता। इसीलिए फरमाया, शिर्क से बच जाओ। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो किसी चीज के भी खालिक नहीं बल्कि खुद मखलूक है, मुर्दा है ना जिंदा। उनको तो ये तक मालूम नहीं कि कब दोबारा उनको जिंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस एक ही है, मगर वो लोग जो आखिरत को नहीं मानते, इनके दिलों में इनकार बस करे क्या, और वो घमंड में पड़े हैं। अल्लाह यकीनन इनके सब करतूत जानता है, छुपे भी और खुले भी। वो इन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो गरूर नफ्स में मुब्तला हो। ये नफ्स का गरूर क्या होता है? बड़ापन होने का गरूर। बहुत पढ़ी मैं, बहुत पढ़ी लिखी, और अफसोस कैसा कहना पड़ता है कि बाज़ दफ़ा जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना तकबर बढ़ता है। बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से तकब्बुर आता है, खास तौर पे माँ बाप से बात करने में, टोन में, उस्तादों से बात करने में, चलने में फख्र है, सर उठाकर चलना, सलाम का जवाब देने से पता चल जाता है कि इंसान के अंदर बड़ापन बना हुआ है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला को ऐसी कोई चीज पसंद नहीं है। यहां से क्या पता चलता है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला की इन बातों को नहीं सुनते और शुक्र नहीं करते, कल क्यामत के दिन वो पकड़े जाएंगे। और ये भी सुखा दिया कि पहले दौर में लोग सूरज चांद को पूछते थे, उस दौर का शिर्क यह था, आज लोग सूरज चांद के लॉज को पूछते हैं। साइंस आज के दौर का बहुत बड़ा शिर्क है, क्योंकि लोग अपने आप को तरक्की के रूज पे समझते, कहते हैं हमें अल्लाह की जरूरत नहीं, तो कहा साइंस को नहीं पूजो बल्कि रब को पूजो। इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ ये जो बात हुई ना कि लोग अपने आप को मुश्किलात में डाल लेते हैं, अल्लाह की तरफ नहीं लेके चलते, तो ये चीज मेरे और आपके अपने अमल के लिए भी होना चाहिए कि अगर हम वाकई बचना चाहते हैं तो हम अल्लाह की बात माननी पड़ेगी। बात भी है, इसीलिए अगली आयतों में फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम माज़ा अनज़ला रब्बुकुम, और जब कोई इनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज नाजिल की है, तो कहते हैं अजी वो तो अगले वक्तों की फरसूदा कहानी है। हाईलाइट करें जो आप और मैं इस वक्त पढ़ रहे हैं, ओल्ड डेटेड बुक, 1400 साल पुरानी किताब, असातीर अस्तूरत उनकी जमा, फैब्रिकेटेड कहानियां जिसको फोक टॉक्स कहते हैं, लोक बातें कहानियां, ये क्या कुछ है का, ये बातें वो इसलिए करते हैं कि क्यामत के रोज अपने बोझ भी उठाएं और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये जहालत की बिना पर गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो वो अपने सर ले रहे हैं। आप और मैं देखिए कि अल्लाह ताला को किताब की बात करते वक्त ऐसे लगता है कि गुस्सा आता है, जब लोग खुद को बड़ा समझें। और आप नोट करके देखिएगा, अल्लाह का खौफ ना होना, अल्लाह की परवाह ना रहना, इसी तरह ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ना, ये इंसान को इस किताब से फायदा उठाने से रोकता है। एक हदीस में आता है कि तीन निजात देने वाली चीजें, वो कौन सी, अल्लाह का खौफ होना जाहिर में भी और बातिन में भी, यानी यहां इस वक्त सबके बीच में तो भी हम अल्लाह से डरे और अकेले में घर में रात को हो तो भी अल्लाह से डरे, फिर खुशी और गम में हक की बात करना, आप गम से दें खुशी है, हक का साथ दें, और तीसरी चीज खुशहाली और तंग दस्ती में खर्च करना। ये ना कि अच्छे दिनों में खूब खर्च करें और जरा मनी कम हुई तो सबसे पहले तो आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च करना छोड़ा। फिर आपने फरमाया कि हलाक करने वाली भी तीन ही चीजें हैं, कौन सी, नंबर एक ख्वाहिश नफ्स जिसकी पैरवी की जाए, फिर वो बुखल जिसकी इताअत की जाए, स्टिंजीनेस, और तीसरा आदमी की खुद पसंदी की आदत। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीजों से बचाए, और फिर अपने आप से कि नफ्स के गरूर से बचना है। और आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुरान दोनों को दो तरह से लगता है, कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता, फर्क किस बात के, इसको पढ़ने का अंदाज है। जब आप इसको अमल की किताब समझेंगे ना तो आपको ये अच्छा लगेगा। और एक असूल याद रखिएगा कि दीन की बात करते वक्त हमेशा बैकवर्ड जाए, पिछले असलाफ ने क्या कहा, पिछले दौर के लोगों ने क्या कहा, और दुनिया की तरक्की में आगे देखे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। जो लोग कुरान को लेटेस्ट व्यूज में पढ़ना चाहते हैं, बदलते वक्त के तकाजों के साथ इस किताब को पढ़ते हैं, वो किताब को बदल देते हैं। तो इसलिए हमेशा इसमें ओल्ड इज गोल्ड वाला असूल याद रखिए। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों ने इस्लाम की बात के खिलाफ जो बातें की, कल क्यामत के दिन इसका बोझ लेकर आएंगे। और याद रखो ये कोई नई बात नहीं है, कद्म करल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने सर पर ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग हक को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मक्कारियां कर चुके हैं, तो देख लो कि अल्लाह ने इनके मकर की इमारत को जड़ से उखाड़ फेंका और उनकी छत ऊपर से इनके सर पर आ रही है, और ऐसे रुख से इन पर अजाब आया जिधर से इनको आने का भी गुमान तक न था। आज भी आप देखिए साजिशों की बात है ना, जितना जिस मुल्क में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा होता है उतना उसी मुल्क में इस्लाम फैलता है। जिसने इस्लाम के लिए गड़ा खोदा वो खुद उसमें गिर गया, फिर क्यामत के रोज इनको जलीलो ख्वार करेगा और इनसे कहेगा बताओ अब कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम अहले हक से झगड़ा किया करते थे। जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए, हाँ इन्हीं काफिरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं तो सरकशी छोड़कर फौरन हथियार डाल देते हैं। इमेजिन करें सारी जिंदगी सरकश रहे, रिबेलियस, नाफरमान, मौत के फरिश्ते को देख के अब कैसे भीगी बिल्ली बनते हैं, और क्या कहते हैं ऐसे वक्त में, हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे, यानी हमने कोई मिस्टेक नहीं की, मलाइका जवाब देते हैं, कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारे सब करतूतों से खूब वाकिफ है, अब जाओ जहन्नुम के दरवाजों में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत ये है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए। क्या पता चला, अजाब कब्र लिख लीजिए शायद को। बाद लोग कहते हैं ना कुरान में कहाँ है अजाब कब्र की बात, तो यहाँ लिखी है, मरते ही खबर हो जाती है कि ये सब कुछ होगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाओ, दीन पर अमल करने से दुनिया नहीं जाएगी, अपने आप को इस बात का यकीन रखो। इसीलिए अगली आयतों में फरमाया, वकील लिल्लज़ीन तक़ू माज़ा अंज़ला रब्बुकुम क़ालू ख़ैरा। दूसरी तरफ जब खुदा तरस लोगों से पूछा जाता है ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई, तो वो जवाब देते हैं बेहतरीन चीज नाजिल हुई है। हाईलाइट करें, कोई आपसे भी तो पूछ सकता है। सुबह गई थी आप पारा सुनने, क्या नाजिल हुआ, क्या सुन के आई, तो क्या कहेंगे, कुछ ना पूछो, बड़े मुश्किल हुक्म है, एक एक बात सुन के बस अब तो जिंदगी मुश्किल है, ये जवाब आपने देना है। खैर खैर ही है ना, जब हमारी जिंदगी में आती है उसका हमें फायदा हो जाता है, लेकिन ये तो मानना है कि हम माने ना माने लेकिन अल्लाह की तरफ से जो खैर नाजिल हो रही है, इसी तरह के नेकोकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर इनके हक में बेहतर है, ये बता दिया। मत कहो कि दीन बनाओगे तो दुनिया बिगड़ेगी। अक्सर मिसाल देती हूँ, सबको उससे फायदा बहुत होता है, आपको भी दे देती हूँ। देखिए आप कहते हैं कि आप दीन बनाएंगे, अल्लाह कहता है आप दीन के लिए काम करेंगे ना, आपकी सबसे पहले दुनिया बनेगी। इसकी मिसाल समझिए, हम सब इस रूम में हैं, हमें चॉइस दी जाती है कि इस रूम से बाहर चले जाओ या उस मेन डोर से बाहर चले जाओ। कुछ लोग कहते हैं बस मुझे इस दरवाजे से बाहर निकाल दें, मुझे यहां से निकाले, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे घुटन लग रही है, मैं तंग हो रही हूं। अच्छा भी जाइए, जूं ही आपको इधर से निकाला, सारों को निकाल दिया, आप देखिए यहां तो आप फिर भी रिलैक्स बैठे होंगे, जब आप ये बाहर लॉबी में और आप सा रही हो कितनी घुटन होगी, फिर आपको समझ आएगी ओहो यहां तो मैं अच्छी बैठी हुई थी, मैं वहां क्यों फंस गई। लेकिन आपको यहां बैठ के लग रहा था वहां वाले कितने मजे में बातें भी कर लें, फोन भी उठा लें, मैसेज भी उठाया कर लें, और उनको सोने का मौका मिले तो सो भी लें, लेकिन आप वहां गए तो दम घुटा। आप में से कुछ अकलमंद लोग थे, उन्होंने कहा नहीं हमें इसकी फिक्र नहीं, हमें बाहर के डोर से बाहर निकाले। अब मुझे बताइए कि जब आपको इस रूम से मेन डोर से बाहर निकालना है, किस रास्ते से निकालेंगे, इसी दरवाजे के रास्ते से निकालेंगे। वो बाहर का डोर आपकी आखिरत है, ये दुनिया है। जो बंदा सिर्फ दुनिया मांगता है ना, वो इधर से निकल के आगे आता है, पढ़ेंगे आगे दुनिया ही तंग हो जाती है। वो मनारा दन जिक्री फाइनल मई शतन दन का सूरत आहा में आएगा, लेकिन जो आखिरत मांगते हैं तो दुनिया उनके रास्ते में से गुजरती है। वल्ला ही ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए, सिर्फ दुनिया पाने के लिए दीन लेना शुरू हो जाए, ऐसी जलील होके दुनिया हदीस में आते है, उस बंदे के पास आती, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं तलब, मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता लो लेना पड़ेगा, तुम लो, जान छुड़ाओ, इधर निकालो उधर करो, और दुनिया आपके हाथ में आ जाएगी। और जो दुनिया के पीछे भागता है सारी जिंदगी दुनिया उसको आगे रखती है, इधर भागो इधर जाओ, तो जरूरत है इस बात की कि हम अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करें। जिधर जाके मुस्तकिल तौर पे रहना, चीजें तो वहीं भेजनी है ना, कच्चे घरों में और वक्ती घरों में क्या रहना। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का, हमेशा क्याम की जन्नत है जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां वो सब कुछ है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। ये जज़ा देता है अल्लाह मुत्तकियों को, दुआ कीजिए अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, इन मुत्तकियों को जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब मलाइका कब्ज करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने अमाल के बदले। पीछे क्या हो रहा था, फरिश्ते को देखकर जान निकल रही थी गुनाहगार की, तो नेक शख्स को मौत के वो खुशखबरियां मिलती हैं, फरिश्ते आके उनको कहते हैं चलो तुम्हें अल्लाह बुला रहा है, अब आपने सारी जिंदगी अल्लाह को खुश किया तो आप तो पहले जेरे लब मुस्कुराएंगे, अच्छा जी अल्लाह मुझे बुला रहा है, माशाल्लाह बस आ गया वो दिन जिसके इंतजार में थी। आप सोचिए जरा, हमारी मौत का वक्त और हमारे फरिश्ते हमें कहें कि चलो तुम्हें अल्लाह बुला रहा है, तुम्हारा बुलावा, हमारे पांव जमीन पर टिकेंगे, हम कितना खुश होंगे उस दिन, लेकिन शर्त तकवा, बचते बचाते इस दुनिया से गुजर जाए। और अगर ये नहीं है तो मौत का नाम सुनकर दिल बैठने लगेगा। ए नबी, अब जो लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा और क्या बाकी रह गया है कि फरिश्ते ही आ पहुंचे या तेरे रब का कोई फैसला सादिर हो जाए, इस तरह की ढिठाई इनसे पहले भी बहुत से लोग कर चुके हैं। फिर ये जो कुछ इनके साथ हुआ, इन पर अल्लाह का जुल्म ना था, इनका अपना जुल्म था जो खुद इन्होंने अपने ऊपर किया। इनके करतूतों की खराबियां आखिरकार इनकी दामनगीर हुई और वही चीज इन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक करते रहे थे। वही होता है जिसका डर है, उर्दू में आप कहते हैं ना, वही हुआ जिसका डर है। जो लोग इस दुनिया में अल्लाह को नाराज करेंगे, कल उनके साथ वही होगा जिसको उनको डर था। इमेजिन करें, चंद सेकंड के लिए आंखें बंद करें और खुद से पूछें, अगर मैं इसी हालत पे मर जाऊं जिस पे मैं अब हूं, यानी जो मेरे हालात हैं, जो मेरे तौर तरीके हैं, जो अल्लाह से ताल्लुक है, जो नमाजों से मेरा मामला है, जो अल्लाह की शरीयत से मेरा ताल्लुक है, अगर इसी हालत पे मैं मर जाऊं तो मेरा अंजाम क्या हो? तय्यबीन हूं या खबीसीन में से हूं? सबसे पहले इंसान अपने आप को पाक करे, हर गंदी सोच, ख्याल, बात लुकमे से पाक कर ले, क्योंकि मौत किसी वक्त भी आ सकती है। और याद रखिए, डेथ इज नॉट द लेवलर। लोग कहते हैं ना, डेथ इज लेवलर, लेवल पे कर देगी, हर एक मरने के बाद एक जगह जाएगा। अगर मौत सबको एक लेवल पे कर देती तो और क्या चाहिए था? मरते मट्टी बनते खत्म। मौत के बाद मेरा आपका असल स्टेटस बनेगा। आप इसको यूं सोचिए कि शादी से पहले भी लड़की का स्टेटस होता है, पेरेंट्स के साथ चलता है, असल उसका स्टेटस कब बनता है? शादी के बाद। अच्छे अमीर घर का शौहर मिल जाए तो उस लड़की के भी अच्छे दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बात वह माँ बाप के घर में बहुत दौलत होती है, उस मियाँ के साथ बस गुजारे का मामला होता है। साफ पता चल जाता है इस औरत का शौहर गरीब है। नतीजा क्या निकला? स्टेटस वही है जो आपका बाद में बना। आप इसी को समझे, ये दुनिया हमारा मैका है, हम सब यहां बस एक लेदे पे चल रहे हैं, असल मेरा आपका स्टेटस हमारी आखिरत है। आगे सिर्फ वाक्य में पढ़ेंगे, हाफिजतुर राफिया, ऊंचों को नीचा और नीचों को ऊंचा करेगी। अल्लाह के नबी अपनी अजवाज को कहा करते थे कि उठो, अमल करो, इबादत करो, रुब्बा कासियात नारियात, कितनी ही कपड़े पहनने वालियां क्यामत के दिन बरहना होंगी। मतलब ये था कि आज शोहर वालियां हो, कल तुम बगैर शोहर वाली ना बन के जाना। आज अल्लाह ने तुम्हें नबी की बीवी बना दिया, शुक्र करो, कल पता चले कि तुम अल्लाह की रहमतों से निकल चुकी हो। तो अपने लिए हमेशा एक क्राइटेरिया रखिए कि आखरत की कीमत पे मैंने दुनिया नहीं लेनी। बस सिंपल सी बात है, दुनिया उसके अलावा मिलती है, मिल। और यकीन करें, जिस दिन आप ये यकीन कर लेंगे ना कि मुझे आखरत नहीं बेचनी, तो उस दिन आपके ज्यादा दुनिया आएगी। जितना ज्यादा आप अपनी जात को साफ करते जाएंगे, आपको अल्लाह ताला दुनिया भी देगा और आखरत भी इंशाअल्लाह ताला देगा। इसीलिए फरमा दिए कि ऐसे लोग ऐसी बातें करते रहे, अपने ऊपर अपनी खराबियों को देख लें। इसी तरह मुशरिकीन का एक बहाना, इसको हाईलाइट कीजिए, बड़ी अहम आयत है। आज भी बहुत सारे लोगों का यही मसला है। क्या? वकाल अल्लज़ीना अशरकु लौ शा अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शय। ये मुश्रिकीन कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत करते, और ना इसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे, तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? क्या पता चला, क्या करें, अल्लाह ही नहीं चाहता। आज भी लोग ढिठाई के साथ गुनाह करते हैं, जुर्म करते हैं, और कोई पूछे क्यों किए, किस तरह हो गया, कहते हैं अल्लाह ने नहीं रोका, अल्लाह ने नहीं चाहा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर एक दफा अल्लाह के नबी सल्लम गए, तो आपने अच्छे बाप होने के नाते से उनको नसीहत की, फातिमा और अली को, कि रात को उठ के तहज्जुद पढ़ा करो। हजरत अली उस वक्त किसी मूड में होंगे, कहने गए, अच्छा अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म होगा तो उठा लेगा। यदि मतलब यह था कि अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो अल्लाह के नबी ने अपनी रान पे हाथ मारा, और कुरान की एक आयत है जिसमें आता है कि इंसान बड़ा झगड़ालू है, वो आयत पढ़ी और आपने कहा कि इंसान अल्लाह के मामले में झगड़े करता है। यानी तुम खुद ही नहीं उठना चाह रहे तो अल्लाह पे डाल रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे नहीं उठाता। तो आज बहुत सारे लोगों ने गुनाह का ये सर्टिफिकेट रखा हुआ, अल्लाह ने नहीं चाहा, रोक लेता, मना करता। तो समझ लीजिए इस बात को कि अल्लाह की रजा और चीज है और उसकी इजाजत और चीज है। एक है अल्लाह की इजाजत, इजन, परमिशन, और एक है उसकी रजा, यानी इंग्लिश में समझ लीजिए, किसी चीज की परमिशन मिल जाए या किसी चीज को अप्रूव किया जाए, क्या ये दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल एक जैसी चीजें नहीं है। परमिशन तो आप दे ही देते हैं, कर लो जो करना है, आपकी मर्जी। अप्रूवल आप कब देते हैं? जब आप उस काम से खुश भी होते हैं। मसलन इसको एक मिसाल से समझिए कि कुछ लोग इम्तिहान के कमरे में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हैं। अब वो स्टूडेंट आ गया, एक एग्जामिनर आके उसको चेक कर रहा है। वो स्टूडेंट अपने पेपर में अलिफ लिखे, बे लिखे, इंग्लिश लिखे, उर्दू लिखे, हिस्ट्री लिखे, गाने लिखे, फिल्में लिखे, उसको इजाजत है? ये है इजाजत? उसको कोई एग्जामिनर जो वॉच कर रहा है आके ये नहीं कहेगा सही जवाब लिखो, गलत क्यों लिख रहे हो। लेकिन जिस दिन उसका पेपर आगे एग्जामिनर के पास जाएगा, तो क्या ये परमिशन आप उसकी अप्रूवल का जरिया बनेगी, उसको फर्स्ट करार देंगे? यही फर्क है। बहुत सारे लोग इस फर्क को भूले हुए हैं। हर काम इस दुनिया में अल्लाह की रजा से नहीं होता, अल्लाह उस पर राजी नहीं होता, उसकी मशीयत पे होता है। अल्लाह हमें रोकता नहीं है क्योंकि उसने हमें इख्तियार की आजादी दी है, लेकिन लोग जुल्म करते हैं। अच्छा, मजे की बात, गुनाह करके कहते हैं कि अल्लाह ने नहीं चाहा, तो फिर क्या करते हैं? तो नेकियों पे फिर अजर क्यों मांगते हैं आप? अल्लाह ने चाहा नेकी हो गई, जैसे अल्लाह ने चाहा तो गुनाह हो गया। आपको गुनाह पे सजा नहीं मिलनी चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह ने नहीं रोका, तो नेकी पे जजा क्यों मिले? अल्लाह ने करवाई, आपने क्या किया? तो ये सोचने समझने की बात है। हम जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। बाद लोग तकदीर का सहारा लेते हैं, मेरे नसीब में था। मसा एक शख्स है, आप देखिए कि रमजान है और वो फिल्म देख रहा है। कोई कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती रोजे की हालत में या रमजान के दिनों में ये क्या वक्त जाया कर रहे हो? कहता है मेरी किस्मत में था, अल्लाह ने रख लिखा था, मैंने इसलिए देखी। अब कोई अकलमंद उसका कान पकड़ के पूछे, ये बताओ जब तुमने नहीं देखी हुई थी, तुम्हें किसने बताया कि अल्लाह ने लिखा हुआ इस वक्त फिल्म देखो? और तुम मजबूर हो गए कि हाय अल्लाह ने इस 11 से 2 बजे तक लिखी हुई है, आपको करने से पहले तो अल्लाह ने नहीं बताया। तो ये सिर्फ धोखा है। कभी गुनाह करके अपने आप को ये झूठी तसल्लियां ना दे कि अल्लाह के हुक्म से हो गया, अल्लाह के हुक्म से नहीं होता। इसीलिए फरमाया ऐसे ही बहाने इनसे के लोगों ने भी बनाए, तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा भी कोई और बात है? कोई और बात की भी जिम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके जरिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। अल्लाह हमें भी बचा ले। फमिन हो मन हद अल्लाह व मिन हो मन हक कतल दलाला। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई, फिर जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका। ए नबी, तुम चाहे इनकी हिदायत के कितने ही हरीस हो, मगर जिसको अल्लाह भटका दे फिर इसे हिदायत नहीं दिया करता। और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। कैसे? नालायक स्टूडेंट की तरह। ऐसे लोगों की मदद अल्लाह कभी नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं हिदायत सिर्फ उसको मिलेगी जो खुद तड़पेगा, जो रोएगा, जो परेशान होगा। तो गाइडेंस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुबहान तआला। गिफ्ट किसको मिलेगा? जो डिजर्व करेगा। मैंने हिदायत नहीं मांगी, मुझे नहीं मिलेगी। आपने मांगी, आपको मिल गई। या आपका इस किताब को थाम लेना आपकी मांगी हुई दुआ की कबूलियत की अलामत है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हिदायत के लिए अल्लाह से तड़पें। सोना मांगे ना मांगे, चांदी मांगे ना मांगे, हीरे मांगे ना मांगे, अल्लाह से हिदायत मांग ले। क्यों? क्योंकि हिदायत के साथ दुनिया की जो नेमत मिलती है ना, वो रहमत बन जाती है, और हिदायत के बगैर जो नेमत मिलती है ना, वो जहमत और आजमाइश बन जाती है। बस आपको औलाद मिल गई, लेकिन औलाद की सही तरबियत करने की हिदायत नहीं मिली, गाइडेंस ही नहीं थी। कई लोग कहते हैं हमें खुद नहीं पता था बच्चों को कैसे पालते हैं। अब वो क्या, वो बच्चे आंखों का नासूर बन गए, खुद भी तो देर से आए ना। तो लिहाजा हिदायत पहले ले, फिर उसके बाद दूसरी चीजें मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर के साथ वो सारे मामलात को हमारे सामने रखेगा।